আছে কিছু কাজ তবে অনুমানে, নহে কেন অনিবানে এই অগ্রস্থানে, নহে কেন অনিবানে এই উগ্রস্থানে, রজস্তম গুণে এরা সবাই আছন্ন, রজস্তম গুণে এরা সবাই আছন্ন, বাসুদেব কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন, বাসুদেব কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন, তবে যদি তব কৃপা হয়ে আহে চুকি, তবে যদি তব কৃপা হয়ে আহে চুকি, সকল সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকি, সকল সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকি, কি ভাবে বুঝলে তারা বুঝতে রস, কি ভাবে বুঝলে তারা বুঝতে রস, এত কৃপা কর প্রভু করে নিজ বশ, এত কৃপা কর প্রভু করে নিজ বশ, তোমার ইচ্ছায় সব হয় মায়া বশ, তোমার ইচ্ছায় সব হয় মায়া বশ, তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ, তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ, তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার, তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার, বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথাতে তোমার, বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথাতে তোমার, ভাগবতের কথাতে তব অবতার, ভাগবতের কথাতে তব অবতার, ধৃত হইয়া শুনে যদি কানে বার বার, ধৃত হইয়া শুনে যদি কানে বার বার, শৃণ্বতাম স্বকথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন, হৃদয়ন্তস্থহয় ভদ্রাণি বিদুনোতি সুহৃৎসতাম, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनावृतं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चात्यकर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे रजस्तमहते तव कायि विस्तर रजस्तमहते तव कायि विस्तर हृदयेर अभद्र सब कुचिबे सहार हृदयेर भद्र सब भुजिबे ताहार की कर बुझाब कथा बरसे चाहे की कर बुझाब कथा बरसे चाहे आमिति नहि न कोनो शक्ति नहि कुत्र आमिति नहि न कोनो शक्ति नहि अथ च एमे च प्रभु कथा बोले बारे अथ च एमे च प्रभु कथा बोले बारे जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो ए बारे जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो ए बारे अखिल जगत गुरु वचन से अमार अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकित परिवार क्षमता तुम्हार अलंकृत परिवार क्षमता तुम्हार तब कृपा होले मोर कथा शुद्ध हबे तब कृपा होले मोर कथा शुद्ध हबे चुनिया सबार शोक दुख जे घुचिबे चुनिया सबार शोक दुख जे घुचिबे आनिया छे यदि प्रभु आमारे न चाहते आनिया छे यदि प्रभु आमारे न चाहते ना चाहो न चाहो प्रभु न चाहो से मते चाहो न चाहो प्रभु न चाहो से मते काष्ठ रे पुतली जता न चाहो से मते काष्ठेरा पुतली जता न चाहो से मते भक्ति नाय वेद नाय नाम शुभ धरो भक्ति नाय वेद नाय नाम शुभ धरो भक्ति वेदांत नाम वेद सार्थक करो भक्ति वेदांत नाम एव सार्थक करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय गौरानुताय 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 जय गौरानुताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल
प्रतिपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतहिस्वयं चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण मार्की ने भागवत धर्म अमेरिका में भागवत धर्म का प्रचार ये कविता श्रील प्रभुपाद ने उस समय लिखी जबकि वो अमेरिका के बॉस्टन शहर में पहली बार पहुंच गए भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए। ये भागवत धर्म हमारा सनातन धर्म है, आत्मा का धर्म है, श्री कृष्ण के भक्ति का धर्म है। लेकिन धर्म के बारे में इतने सारे भ्रांतियां भ्रम हैं हमारे देश में भी और विश्व भर में भी कि लोगों ने धर्म को राजनीति के क्षेत्र में एक यंत्र बना दिया है या अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक साधन बना दिया है। लेकिन असलियत में धर्म क्या चीज है ये समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़कर अमेरिका में जाने की इच्छा रखी। श्रील प्रभुपाद जी जब नौजवान थे तो उस समय उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम सुशिक्षित पढ़े लिखे सुसंस्कृत परिवार के नवयुवक हो, तुम्हें ये भागवत धर्म का प्रचार, चैतन्य महाप्रभु का संदेश अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में करना चाहिए। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जानते थे कि भारतवर्ष के लोग अभी ज्यादा से ज्यादा भोगवाद और नास्तिकवाद को स्वीकार कर रहे हैं, पाश्चात्य देशों की जीवन प्रणाली को स्वीकार कर रहे हैं और अपने ही संस्कृति को ठुकरा रहे हैं। उन्हें इस बात का बहुत दुख था तो उन्होंने अभयचरण डे जो कि पहली बार उनसे मिले थे जो आगे चल के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हुए उनसे उन्होंने कहा कि आपको आपका जीवन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए देना है और ये पहली बार अभयचरण अपने गुरु महाराज से मिले थे और पहली बार की मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें एक सारे जीवन का मिशन दे दिया था कि आपको सारा जीवन इसमें लगा देना है। और उस समय अभयचरण सोच रहे थे कि पहली बार इनसे मिल रहा हूं, न जान न पहचान, लेकिन मेरे सारे आयुष्य के लिए उन्होंने एक मुझे बड़ा काम सौंप दिया है। लेकिन अभयचरण ने इस आदेश को अपने हृदय में स्वीकार किया, ग्रहण किया, कभी भूले नहीं इस आदेश को। उस समय श्रील प्रभुपाद जी केवल 20-25 साल के हुए होंगे और फिर अंततः वो अमेरिका के लिए रवाना हुए 70 साल की आयु में, 40-50 साल के बाद में। लेकिन इन 50 सालों में प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव का आदेश अपने हृदय में रखा, हमेशा इस आदेश के ऊपर चिंतन मनन किया। आगे चल के वो गृहस्थ आश्रम में गए, फिर एक व्यवसाय में आए, नौकरी कर रहे थे, फिर आगे चल के व्यवसाय उन्होंने शुरू किया। बहुत कठिनाइयां हुई उनको व्यवसाय के जीवन में, काफी कुछ नुकसान हुआ, बहुत सारे घटनाएं अपने निजी जीवन में हुई, लेकिन फिर भी कभी भी भक्ति मार्ग को उन्होंने छोड़ा नहीं बल्कि तीव्रता से करते रहे। और 50 साल की उम्र में जब उनका व्यवसाय फिर से पुनः डूब गया तो उन्होंने वो निराश नहीं हुए, उन्होंने सोचा कि ये भी भगवान की कृपा है, अभी भगवान मुझे ज्यादा से ज्यादा उनके शरण में ले जाना चाहते हैं। यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनं शनैः, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आदेश जो कि उन्होंने उद्धव को श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में दिया था वो स्मरण आया। जब श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं मेरे भक्त को कृपा का पहला हफ्ता देता हूं इंस्टॉलमेंट, तो मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अभी मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा धन सब चला गया, मुझे सोचना चाहिए कि मुझे भगवान की कृपा मिली है। अगर ये कृपा नहीं मिली होती तो मैं मेरे व्यवसाय के कार्य में ही लगा रहता अंतिम क्षण तक, लेकिन अभी मैं मजबूर हो गया हूं, मुझे जबरदस्ती भगवान के शरण में जाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी, उनके हृदय में पहले से ही इच्छा थी कि कैसे हम भगवान के शरण में जाएं, कैसे अपने गुरु महाराज की इच्छा की पूर्ति करें, कैसे विश्व भर में जाके भागवत धर्म का प्रचार करें, क्योंकि सब जगह है इतना कलह है, इतना शोक दुख कष्ट उपद्रव उत्पात सब जगह संसार में। आज परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, हर जगह कहीं भी शांति नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं, भाईचारे की भावना नहीं, प्रेम नहीं, क्षमा दया नहीं, सभी लोग बड़े से बड़े असुर बनते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसी परिस्थिति देखी, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प किया था उन्होंने कि मुझे धर्म प्रचार करना है, मुझे धर्म प्रचारक बनना है, और बने भी अपने व्यवसाय के साथ में भी करते रहे। लेकिन प्रभुपाद जी इससे संतुष्ट नहीं थे, उनको अपना सारा जीवन देना था कृष्ण के लिए, कृष्ण के संदेश को पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर यह दृढ़ विश्वास था कि केवल कृष्ण भक्ति करने मात्र से सारे संसार के समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये संसार अग्नि एक ऐसे जंगल के समान है जिसमें आग लगी हुई है, संसार दावा नल नीधलो का, और वो चाहते थे कि कृष्ण कथा के माध्यम से ही ये अग्नि बुझ सकती है। तो ऐसा भागवत धर्म का प्रचार करने जा रहे थे जिस भागवत धर्म में कोई छल कपट नहीं, जिसमें कोई धोखेबाजी नहीं, जिसमें कोई भौतिकवाद नहीं, केवल शुद्ध कृष्ण प्रेम, भगवान की सेवा और भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना। धर्म प्रोज्जित कैत्रवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन मूलयम। श्री वेद व्यास जी बताते हैं कि यह भागवत धर्म प्रोज्जित कैत्रव, कैत्रव मतलब धोखेबाजी, तो धोखेबाजी की चीजें जो हैं वो बाहर निकाल दी गई है इस भागवत धर्म से, इस श्रीमद भागवत ग्रंथ से, और ये केवल उन लोगों के लिए है निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, जो निर्मत्सर है, जिनके हृदय में द्वेष नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, और ये ऐसा धर्म है जो हमें वस्तुतः जो सत्य है, आध्यात्मिक सत्य, वो हमें दिलाएगा, और ऐसे सत्य जब हमें पता चल जाएगा तो क्या होगा, तापत्रय उन्मूलनम, हमारे हृदय में जो तीन प्रकार के ताप हैं, तीन प्रकार के कष्ट क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, उन्मूलनम, जड़ से ये निकाल दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये ऐसे भागवत धर्म का प्रचार श्रील प्रभुपाद वहां करने गए थे, और जब प्रभुपाद वहां गए, ऐसा नहीं कि केवल आसानी से जा पाए, कई सालों की तपस्या उनको करनी पड़ी। जब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश हुए तो उस समय वृंदावन में जाकर राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे, आज भी उनकी कुटिया, उनके कमरे वहां हैं, हमारी संस्था उन दो कमरों का देखभाल करती है, और उनके पास कोई धन नहीं, कुछ नहीं था, एक साधारण वैरागी और सन्यासी का जीवन, वानप्रस्थी का जीवन वहां बिताते थे। उन छोटे कमरों में रहकर वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते, टीका लिखते, क्योंकि वो जानते कि अगर मैं विदेश गया तो हमारी हिंदी, संस्कृत, बंगाली, कन्नड़ भाषा नहीं चलेगी वहां पे अंग्रेजी भाषा चाहिए। तो अंग्रेजी भाषा में टीका लिख रहे थे श्रीमद् भागवत के ऊपर, बहुत लंबा समय लगा उन्हें, क्योंकि हर एक शब्द का अर्थ उन्हें लिखना था, फिर उसके बाद अनुवाद और हर एक श्लोक के ऊपर टीका। ऐसे लिखते लिखते उनको बहुत समय लग गया और फिर वो सोच रहे थे कि अब 10-12 अध्याय समाप्त हुए, अभी इनको छापना चाहिए। तो छापे तो कहां, वृंदावन तो एक बहुत अनुकूल स्थान है ग्रंथों की रचना करने के लिए, लेकिन यह छापने की व्यवस्था नहीं है और न ही यहां ऐसे कोई धनी लोग हैं जो कि इसे धन देकर छपा सकें। तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में किसी मंदिर में कभी कभी कहीं आश्रम में कभी कहीं एक छोटे से कमरे में रहकर वो अपनी पत्रिका बैक टू गॉड हेड बांटने लगे और साथ साथ में श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का पहला भाग वो छापने का प्रयास करने लगे। जगह जगह जाते लोगों के पास धन के लिए ताकि वो किताब छाप सकें। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे इतने सारे लोग थे जो धनी थे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग थे जो सामने आकर थोड़ा धन देने के लिए तैयार थे। प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले और बड़े बड़े गवर्नर इत्यादि ऐसे बड़े लोगों से मिले, उन लोगों ने थोड़ा बहुत सहायता करने की का जो है वो वचन दिया, लेकिन उनके पास धन नहीं था छापने के लिए। प्रभुपाद कहने लगे कि 50 साल पहले तक भी ऐसी अवस्था थी कि जो धनी लोग थे उस समय वो भागवत का जो ग्रंथ है उसे हाथों से लिखवाया करते थे अन्य पंडितों से और फिर उसको बांटते थे। उस समय मुद्रणालय वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे लोग उदार हृदय के होते थे, दानी लोग होते थे जो श्रीमद् भागवत के वितरण के लिए सहायता करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि धनी लोग तो बहुत थे लेकिन उनका हृदय बहुत छोटा था, श्रीमद् भागवत के प्रचार के लिए धन देने के लिए तैयार नहीं थे। कितना घूमे प्रभुपाद जी और उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा और जब धन एकत्र हुआ भी और उन्होंने छापा भी तो सारे जो पंक्तियां छापी गई थी उनके लिए पर्याप्त पैसा नहीं था उनके पास। 1000 छापी थी उन्होंने किताब, लेकिन 200 के लिए ही पैसे दिए थे उन्होंने, तो 200 बांटकर फिर जो पैसा उससे आता था उससे बाकी 800 के लिए पैसे देकर उनको कीमत चुकानी थी। ऐसे योजना या समझौता उन्होंने मुद्रणालय से कर दिया था और इस प्रकार से एक एक किताब बांटते बांटते लोगों से बहुत कुछ उन्हें सुनना पड़ा। लोग बोलते स्वामी जी आपने तो संन्यास लिया है फिर आप व्यवसाय क्यों कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी समझाते ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये भागवत धर्म का प्रचार है, ये कोई साधारण व्यवसाय नहीं है जिसमें कोई उपन्यास इत्यादि बेचते हैं, ये भागवत धर्म के प्रचार में आवश्यक है क्योंकि जब तक श्रीमद् भागवत का संदेश जगह जगह कोने कोने हृदय हृदय में पहुंचेगा नहीं तब तक समाज का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। कभी कभी प्रभुपाद जी उदास हो जाते थे लेकिन फिर अपने गुरु महाराज के आदेश का स्मरण करते और फिर उत्साही हो जाते। उनको मालूम था कि लोग कलयुग में ऐसे होने वाले हैं और ऐसे निंदा करने वाले हैं, तो फिर भी वो अपने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का पहला भाग जो है बांटते गए गली गली घूमते एक एक किताब लेकर। फिर सौभाग्य से सरकार से 50 किताबों का ऑर्डर आया। ऐसे धीरे 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 से वो बांटने लगे, किसी न किसी तरह से पहले भाग की सारी कीमत चुका दी, लेकिन तब तक दूसरे भाग वो उसके ऊपर टीका कर चुके थे। अब उसके लिए उन्हें कोई दान करने वाला ढूंढना था। ऐसे करते करते कितने महीने बीत गए, साल बीत गए, केवल अमेरिका जाने के लिए तैयारी कर रहे थे लेकिन केवल किताब छापने के लिए पैसा नहीं, इसमें सालों साल बीत गए उनके। तो समझिए कितने उनको रास्ते में रुकावटें आई, अड़चने आई। और फिर जब तीसरे भाग को आखिरी अंतिम भाग पहले स्कंद का छापने के लिए समय आया तो वह मुंबई आए। गौड़ीय मठ के उनके जो गुरु भाई थे उन्होंने बताया था कि यहां काफी धनी लोग हैं तो यहां आप किसी से दान के लिए पूछिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि श्रीमद् भागवत वो 60 भागों में छापे
60 किताबों में, क्योंकि वो बड़े विस्तारित रूप से टीका वगैरह लिखना चाहते थे। तो जब भी वो किसी प्रकाशक के पास जाते तो वो कहते, इतना लंबा किताब, इतने 60 भाग छापने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते। छोटी किताब होती तो हम कर देते, 2-4-6 किताब होते फिर भी हम कर देते, लेकिन 60 किताब हम कैसे छापेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी निराश नहीं हुए। फिर सिंधिया शिपिंग कंपनी, उस समय की प्रसिद्ध जहाज की कंपनी थी, वहां उनकी जो मालिक थी सुमती मोरारजी, उनके पास वो गए। किसी ने उनको कहा कि ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं और ये अवश्य आपको आपकी सहायता करेंगी। तो उनके जब दफ्तर में गए तो उनके ऑफिसर उनको अंदर ही नहीं छोड़ रहे थे। ये कौन सन्यासी स्वामी आए, कौन है, ऐसे ऑफिस में कैसे जा सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने ठान ली थी कि मैं तो इनको मिलकर ही जाऊंगा। तो ऑफिस के जो मकान था, बिल्डिंग था, उसके सामने जो सीढ़ियां थी, सीढ़ी पर ही बैठे रहे दिन भर, सुबह से शाम तक, जब तक कि वो सुमती मुरारजी जी बाहर नहीं आई। अकेले बैठते रहे, अपना जाप करते रहे। आते जाते लोग देख रहे थे ये कौन है। चौकीदारों ने बहुत कहा जाओ जाओ, लेकिन प्रभुपाद जी वहां बैठे रहे सड़क पे। और फिर जब शाम हो गई, सुमती मुरारजी जी वापस जा रही थी, तो उन्होंने देखा, अपने असिस्टेंट से कहा, अरे ये कौन स्वामी जी यहां बैठ रहे हैं। तो स्वामी जी प्रभुपाद जी ने मौका दिया, इस मौके के लिए इंतजार कर रहे थे, सीधे जाके उनसे कहने लगे कि मैं आपकी सहायता चाहता हूं, मैं ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ छापना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप अभी काफी देर हो चुका है, कल मुझे मिलने आइए ऑफिस में। तो श्रील प्रभुपाद जी अगले दिन गए। श्रीमती मुरारजी को उन्होंने अपना जो टाइप किया हुआ जो पन्ने थे वो दिखाए और तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा जितना भी पैसा इसके लिए छापने के लगेगा मैं दे दूंगी। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर आगे चल के वृंदावन में फिर से और दिल्ली में फिर छापने का कार्य आगे संभाला। ऐसे बांटते बांटते काफी समय चला गया, अंततः उनका पूरा पहला स्कंद छप गया। हम केवल संक्षेप में बता रहे हैं, लेकिन कितने कठिनाइयां श्री प्रभुपाद को देखने पड़ी, को अनुभव करना पड़ा, ये प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी सोचने लगे कि अब विदेश जाना है तो कैसे जाना है। कई लोग बोल रहे थे, अरे स्वामी जी आप क्या विदेश जाएंगे, वहां जाकर क्या करना है आपको, इस उम्र में घूमना फिरना थोड़ी है, आराम से वृंदावन में बैठो भजन करो। प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, मेरे गुरु महाराज का आदेश है विश्व भर में भागवत धर्म का प्रचार करना है, मैं नहीं ऐसे ही बैठ सकता। तो उस समय वहां एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी सब उन्होंने ऐसे ही यूं ही बातों बातें में कहा, तो अग्रवाल जी ने कहा कि हमारा बेटा अमेरिका में है, इंजीनियर है, तो उसे मैं बता देता हूं, वो बीच बीच में फोन करता रहता है, हो सकता है वो आपके लिए कोई निमंत्रण पत्र इत्यादि तैयार करे। तो प्रभुपाद जी उस बात को भूल गए थे, लेकिन 4 महीने बाद उनको सरकार से एक चिट्ठी आई कि आपके लिए वहां निमंत्रण पत्र आया हुआ है। उसके बाद प्रभुपाद जी अपने पासपोर्ट, वीजा, नाना जो प्रकार के कार्य होते हैं वो सब कागजात तैयार करने के लिए गए। सरकारी दफ्तरों में भी उनको ज्यादा सहकार्य नहीं मिला। सभी लोग बोलने लगे, स्वामी जी आपके पास को पैसे नहीं, और वहां उन्होंने केवल 1 महीने के लिए आपको सुरक्षित रखने की उन्होंने वचन इस कागज में किया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा आपका। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, आपके जो अधिकारी व्यक्ति हैं और ऊपर के, उनसे ले जाइए। ऐसे कर करके हर छोटे हर कदम में प्रभुपाद को कष्ट मिला, लेकिन फिर भी उनका दृढ़ निश्चय था कि मुझे जाना ही है। और फिर जाने के लिए पैसे चाहिए, कैसे जाएंगे। तो फिर उन्होंने सुमती मुरारजी का स्मरण किया, फिर से पहुंच गए सुमती मुरारजी के पास और कहने लगे, उनके असिस्टेंट से मिले, और असिस्टेंट जाके जब सुमती मुरारजी से कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो अभी बहुत वृद्ध हैं, अभी ऐसे जहाज में जाएंगे, वहां जाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। तो जब उनके असिस्टेंट ने आकर प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी ने कहा फिर से जाके पूछो, लेकिन जितने भी बार वो असिस्टेंट जाते सुमती मुरारजी ने इनकार कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे मिलने दो उनसे। कि बहुत दिनों के बाद फिर से वो मिले। सुमति मुरारजी कहने लगी कि आपकी 70 की आयु हुई है, ये उम्र में जहाज में जाना, एक महीना लग जाता है अमेरिका पहुंचने के लिए, और उसमें सागर की लहरें आती है जाती है, आपको बहुत कष्ट होगा, और हमारे सारे असिस्टेंट दफ्तर के बोल रहे हैं कि आपकी मृत्यु भी हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, लेकिन मेरा एक काम है, मेरा जीवन मैंने अपने गुरु महाराज को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है, तो अगर मैं उनका काम नहीं कर सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है, तो आपको देना ही होगा मुझे टिकट। तो आखिर सुमति मुरारजी ने कहा ठीक है, तो उनको एक मुफ्त का टिकट उनके एक जहाज में दिया जिसका नाम था जलदूत। ये केवल सामान के लिए जहाज था, पैसेंजर लोगों को ले जाने के लिए जहाज नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें एक छोटा सा कमरा उनको मिला। और सुमति मुरारजी ने उस शिप के कप्तान से कह दिया कि स्वामी जी के लिए अच्छे से थोड़े सब्जी फल वगैरह रखो, क्योंकि वो मांसाहार वगैरह नहीं करते हैं, तो उनका अच्छा देखभाल कर लेना। आखिर में बहुत बहुत कठिनाई के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों की क्या, बहुत सालों के बाद, प्रभुपाद जी कलकत्ता से जलदूत जहाज से निकलने की तैयारी में थे। और उस समय उनके साथ में केवल एक व्यक्ति थे जो उनको जहाज तक पहुंचाने के लिए आए थे, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति जिनको एक बार लखनऊ में वो ऐसे ही मिले थे, और वो उनसे अच्छी पहचान हो गई, न ही वो उनके शिष्य थे, न उनके साथ में उन्होंने ज्यादा समय बिताया था, अधिक पहचान भी नहीं थी उस व्यक्ति की, और वो व्यक्ति आया उनको छोड़ने के लिए जहाज के पास। और वो व्यक्ति याद करते हैं कि जब ये अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जब जहाज में जा रहे थे, अकेले थे, उनके साथ केवल मैं, कोई उनको साथ में देखने के लिए नहीं था। यह हम देखते रेलवे स्टेशन पे साधारण व्यक्ति के पीछे पीछे भी 10-10, 12-12 लोग आते हैं कहने के लिए कि ठीक है जल्दी आना, लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए आज से 36 साल पहले, ठीक, कोई उनके साथ नहीं, अकेले बूढ़े आदमी 70 साल के, अपना सामान लेकर, एक छोटा सा सूटकेस था, उसमें अपने छोटे से कपड़े, थोड़ा सा अन्न ले गए थे, और उनके जेब में 40 रुपए, और अलग से उन्होंने ये 100 सेट उनके भागवत के छपाए थे, वो बंबई से कोचिन जहाज से अलग जाना था। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी वहां गए बिल्कुल अकेले, और ये व्यक्ति उनके साथ में गए थे, सोच रहे थे, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ये घटना इतनी महत्वपूर्ण होगी, कि जिन व्यक्ति को मैं छोड़ने के लिए जहाज में आ रहा हूं, एक ऐसा ही सामाजिक बूढ़े आदमी है, थोड़ा बहुत भलाई है मानवता के लिए दृष्टि से मैं आया उनको छोड़ने के लिए, लेकिन मेरी कल्पना नहीं थी कि आगे चल के ये ऐसा चमत्कार कराने वाले हैं विश्व भर में, और ये इतनी महत्वपूर्ण घटना हो रही है और मैं इसमें शामिल हूं। मुझे पता नहीं चला था कि ये व्यक्ति अभी इतिहास बनाने जा रहे हैं, मुझे पता नहीं था। तो खैर श्री प्रभुपाद अकेले बस अपने जहाज में रहे, और कहते थे कि जहाज के पानी को, समुद्र के पानी को देखते देखते हमेशा चिंता करते थे, कभी कभी अपना चैतन्य चरितामृत लेके पढ़ते थे, और कहते थे अपनी डायरी में लिखते थे, यही एकमात्र मेरा साहस है, चैतन्य चरितामृत के अमृत का पान करके मेरे हृदय में जो कष्ट है वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। और पानी की लहरों से कभी कभी जहाज ऊपर नीचे होता तो उनको उल्टियां हो जाती, जैसे कि कई बार होता है लोगों को जब वो जहाज पे जाते हैं, और काफी बीमार पड़ गए, और आगे चल के उनको 2 हृदय के दौरे पड़े। पहले बड़े कमजोर थे, 70 साल के थे, उसके ऊपर बीमार थे, और उसके ऊपर 2 हृदय के दौरे एक के बाद एक, खाना भी बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, लेकिन किसी न किसी तरह से तो बचे रहे। उस रात उनको स्वप्न में श्री कृष्ण आए, और श्री कृष्ण रस्सी खींचकर, रस्सी जहाज में डालकर जहाज को खींच रहे थे जल के ऊपर, और कृष्ण उनको स्वप्न में कह रहे थे चिंता नहीं करो मैं तुम्हें ले जा रहा हूं सुरक्षित। तो प्रभुपाद जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा, उठे, पुनः साहस आ गया, और धीरे 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 से उनको स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अब श्रील प्रभुपाद को पता चला कि कृष्ण अभी कंट्रोल में है, भगवान श्री कृष्ण ने यह जहाज को वश में कर लिया है, और अटलांटिक सागर में वैसे बहुत कठिनाई होती है, लहरें तूफान आते हैं तो जहाजों के बचने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन वहां के जो जहाज के कप्तान थे अरुण पांड्या, उन्होंने अपने डायरी में लिखा है कि मैंने 30 साल से हवाई ये जहाज चलाए हैं समुद्र के ऊपर, लेकिन इतने 30 साल में एक भी बार मैंने अटलांटिक सागर को इतना शांत नहीं देखा है। क्योंकि वरुण देव भी तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही है। श्री कृष्ण ने जब नियंत्रण में लिया है ये जहाज तो वरुण देव को उनके आदेश का पालन करना ही था। तो बिल्कुल शांति से जहाज चलता गया। और प्रभुपाद जी अपने डायरी में लिखते हैं कि अगर और कोई समुद्र में तकलीफ होती, तूफान होता और जहाज का उतार चढ़ाव होने लगता और अगर फिर से मैं बीमार होता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हो चुका था और केवल उस समय मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था कि आप कितने मुझे यहां ले आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आगे मेरे लिए क्या रखा है मुझे नहीं मालूम। 35 दिन इस प्रकार से इस जहाज में सफर करने के बाद बॉस्टन शहर में पहली बार रूपा जी पहुंचे और जब जहाज से उतरे वो अपने डायरी में लिखते हैं, मुझे पता नहीं था बाएं जाना है दाएं जाना है कहां जाना है कुछ नहीं मालूम, केवल 40 रुपए जेब में। फिर उतरे और बॉस्टन में फिर उन्होंने ये भजन लिखा। जब जहाज में वापस आ गए, उनको जाना था न्यूयॉर्क शहर में, फिर उन्होंने ये भजन लिखा मार्किने भागवत धर्मा, तो जिसमें उन्होंने लिखा है कि हे प्रभु आप तो बड़े कृपालु हैं और आप अधमों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, लेकिन यहां पर मुझे आप क्यों लाए हैं मुझे नहीं पता और मुझे कहां जाना है कैसे जाना है मेरी गति क्या है मुझे ये भी नहीं मालूम। अभी मेरे लिए कोई कार्य है, आपका ही काम मैं करने यहां आया हूं, लेकिन किस प्रकार से करूंगा क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम। और यहां आप मुझे लाए हैं इस उग्र स्थान में, इस अमेरिका जैसे स्थान में जहां बिल्कुल कोई संस्कृति नहीं है, जहां लोग पूरी तरह से रजोगुण और तमोगुण में पड़े हुए हैं और उनको वासुदेव कथा में बिल्कुल रुचि नहीं है, भगवान क्या है बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन मुझे पता है ये श्रद्धा है कि अगर आप अहेतु की कृपा आपकी इन लोगों के ऊपर बरसाएंगे तो अवश्य सब कुछ संभव हो सकता है, ये लोग भी इस संदेश को समझ सकते हैं। लेकिन मेरे मन में यह समस्या है कि मैं तो क्षुद्र जीव हूं, इन लोगों को जो कि रजस तमस में पड़े हुए हैं इनको ये भक्ति रस के बारे में ज्ञान कैसे मैं दूंगा, इतना ऊंचा ज्ञान इतने नीच लोगों को मैं कैसे दे सकता। लेकिन केवल ये आपकी कृपा से हो सकता है, आपकी कृपा से ही आपकी इच्छा से ही जीव माया के वश में आ जाता है और आपकी कृपा से आपकी इच्छा से ही वो माया से मुक्त हो सकता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी इनका उद्धार कर सकते हैं और फिर आपकी कृपा से वो आपकी कथा को समझ सकते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस भजन में फिर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के कई महत्वपूर्ण श्लोक यहां लिखे जिसमें कृष्ण कथा और कृष्ण भक्ति की महिमा का वर्णन है कि जैसे हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन का पथ अपनाते हैं, तो हृदय में जो भी अभद्र चीजें हैं जैसे रजोगुण तमोगुण के लक्षण ये सब नष्ट हो जाते हैं और फिर शुद्ध कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है। की करे बुझावो कथा बर से चाही क्षुद्र आमे दीन ही न कोनो शक्ति नहीं, मैं तो क्षुद्र जीव हूं मैं दीनहीन हूं कोई क्षमता नहीं मेरे में, मैं कैसे इन लोगों को ये सारा संदेश समझाऊंगा। लेकिन फिर भी आप जगत के गुरु हैं, अखिल गुरु हैं और मेरे वचन को इन लोगों को समझने की पात्रता भी आप ही दे सकते हैं, आप पूरी तरह से समर्थ हैं उनको यह बुद्धि देने के लिए कि जो मैं कृष्ण कथा बोलने वाला हूं वो समझ लें। कृपा करके मेरे वचनों में ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि इन सब के शोक और दुख को मैं मिटा सकूं। आप यहां अवश्य मुझे लाए हैं आपके कार्य को संपन्न करने के लिए। आप जैसा चाहें मुझे नचा सकते हैं। नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ सुमते काश्चर पुतली यथा नाचाओ सुमते। मैं आपके हाथ में एक कठपुतली हूं, तो जैसे आप मुझे नचाना चाहते हैं वैसे आप नचाइए। आपका काम आपको करना है, मैं केवल एक निमित्त हूं, आपके हाथ में कठपुतली हूं। मेरे हाथों से मेरे वचनों से आप क्या कार्य करवाना चाहते हैं वो आप ही को मालूम, लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों में पूरी तरह से शरणागत हूं। जैसे मुझे नचाना है आप नचाते रहिए। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहने लगे, भक्ति नहीं वेद नहीं नामे खूब दायरे। मेरे में कोई भक्ति नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, लेकिन केवल आपके नाम में विश्वास। तो मेरे गुरु भाइयों ने मुझे भक्ति वेदांत का नाम दिया है, तो अब ये नाम सार्थक करो और मुझे शक्ति दो कि मैं आपके कार्य को संपन्न कर सकूं। ऐसी भावना प्रभुपाद जी के मन में थी जब वो अमेरिका में पहुंचे, और जब न्यूयॉर्क में पहुंचे तो नीचे उतरे वैष्णव पोशाक में। शायद इतिहास में पहली बार कोई व्यक्ति अमेरिका में की भूमि पर वैष्णव पोशाक में वहां आया था। धोती कुर्ता तिलक कंठीमाला और हाथ में जपमाला, और वहां के लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे कौन व्यक्ति कहां से आए हैं, कौन से देश से आए हैं, किस कारण आए हैं। और फिर धीरे 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 से प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क के शहर में गंदी से गंदी जगह में जहां नाना प्रकार के नीच से नीच लोग पापी लोग आते थे ऐसे वातावरण में उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया। कई बार शराबी लोग आते थे हल्ला गुल्ला करके जाते थे, कई बार ऐसे लोग आते थे जो ड्रग्स के नशे में आकर वहां हल्ला गुल्ला करके जाते थे, कई ऐसे युवतियां आती थी बिल्कुल वस्त्रहीन अवस्था में, प्राय छुट्टी थे वो लोग, और ऐसे भी लोग आते थे दिनों दिन स्नान नहीं किया उन्होंने, और बस आते थे कोई लोग बैठते थे सुनते थे जाते थे। प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के बीच में रहे, एक किस्म के परिवार से शिक्षित घर आने से आने वाले सन्यासी परम वैष्णव अब ऐसे जगह में जाकर वो प्रचार करने लगे। तो ये है वैष्णव की कृपा, उसकी हृदय की उदारता। जाने के पहले भारत से कई लोगों ने उनसे कहा कि हम आपकी सहायता नहीं करेंगे क्योंकि हिंदू सन्यासी को सागर पार करना मना है, लेकिन प्रभुपाद जी ने सोचा सागर पार करने से भी अगर कोई पाप होगा कोई बात नहीं, लेकिन इन तक कृष्ण कथा पहुंचाना चाहिए। तापत्रयोन मूलनम, यही एकमात्र तरीका है इनके दुख को निवारण करने के लिए। इनके दुखों को दूर करने के लिए अगर मुझे कोई पाप मिले उसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। ये है प्रचारक का हृदय। प्रभुपाद जी रोम रोम में उनके प्रचार की भावना घूम रही थी, कैसे जगत का उद्धार करना है, ये भावना से उन्होंने इस कौन संस्था की स्थापना की। रामानुजाचार्य नाम के एक महान आचार्य रहे दक्षिण भारत में। एक बार जब उनके गुरु ने उनको एक मंत्र दिया ओम नमो नारायणाय और कहा कि मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं लेकिन किसी से जाकर नहीं कहना, अगर तुम कहोगे तो तुम्हारा नरक जाना निश्चित होगा। तो उन्होंने पूछा कि मंत्र से क्या फायदा होगा, मंत्र से सभी लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, तो जैसे ही ये बात सुनी रामानुज ने, वो उस समय बालक थे, तुरंत भागे बाजार में, खुली बाजार में जाके ऊंचे स्थान पर खड़े रहे और चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों को बोलने लगे, आओ आओ मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबसे कहना चाहता हूं। तो सभी लोग आए, ये बच्चा बाल ब्रह्मचारी क्या बोलना चाह रहा है। सभी लोग आए और वहां भाषण देना आरंभ किया, प्रवचन देना आरंभ किया रामानुज ने, और कहा कि एक सरल उपाय है संसार के पापों से संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए, केवल ये मंत्र का उच्चारण करो ओम नमो नारायणाय। जोर जोर से बोलने लगे और वहां ओम नमो नारायण की ध्वनि गूंजने लगी सारे बाजार में, कोलाहल मच गया, सब जगह ओम नमो नारायण है ओम नमो नारायण है। और ये ध्वनि दूर पहुंची रामानुज के गुरु के आश्रम तक। वहां उनके गुरु सुन रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है। और फिर रामानुज के पास आए, कहने लगे, अरे दुष्ट, तुम्हें नहीं मालूम मैंने क्या आदेश दिया था तुम्हें? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने गुरु का आदेश का उल्लंघन करके तुम नरक में जाओगे? तो रामानुज कहने लगे कि मुझे पता है और स्वीकार भी है, और मैं तैयार हूं नरक जाने के लिए, लेकिन मेरे नरक जाने से अगर इतने सारे लोगों का उद्धार हो सकता है और वो भगवान के पास वापस जा सकते हैं तो वही सही। तो ये जवाब सुनकर उनके गुरु बड़े प्रसन्न हुए और आलिंगन करके बोलने लगे, वास्तव में मेरा जीवन धन्य हो गया है कि तुम जैसे शिष्य मुझे मिला। मैं गुरु हूं या तुम, ये सोचने की बात है। तो वास्तव में आज तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया है, क्योंकि सचमुच वैष्णव का हृदय तुम्हारे अंदर है। तो ये है प्रचारक का हृदय, वो ये नहीं देखता कि मेरे लिए क्या कष्ट होना है। सारे जगत के कल्याण के लिए कार्य करना है, उसके लिए अपना सारा जीवन दे देता है। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जब नरसिंह देव के सामने आते हैं और नरसिंह देव को संतुष्ट करते हैं, तो नरसिंह देव उनको बहुत कुछ देना चाहते हैं, कहते हैं जो भी वरदान मांगो मैं दूंगा। और प्रहलाद उनको कहते हैं कि मैं व्यापारी नहीं हूं, आपसे व्यापार करने नहीं आया, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। और नरसिंह देव से कहने लगे, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। प्रायेण देव मुनयो स्व विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैताम विहाय कृपणां विमुक्त एको। तो कहने लगे कि हे प्रभु, ऐसे कई लोग होते हैं, प्रायेण देव, हे देव, प्राय ऐसे देखा जाता है, मुनयो, ऐसे मुनि ऋषि मुनि होते हैं, स्व विमुक्ति कामा अपनी मुक्ति की कामना लेकर बैठते हैं और क्या करते हैं, मौनम। कोई ऐसे ऋषि मुनि होते हैं जो मौन व्रत धारण करते हैं, 12 साल तक बोलते नहीं, 15 साल तक बोलते नहीं। या ऐसे कोई लोग होते हैं चरण की विजने, कोई एकांत स्थान में चरण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं हिमालय में किसी भीतर जंगल में अकेले जाके सुनसान जगह में जाके वहां अपनी मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। न परार्थ निष्ठा, पर अर्थ निष्ठा, दूसरों के हित के लिए उनके हृदय में भावना नहीं है, अपनी मुक्ति होनी चाहिए, अपना उद्धार होना चाहिए, इस अभिलाषा से वो अपनी तपस्या करते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, नैतान विहाय कृपणा विमुक्त एको। तो ऐसे मूर्ख लोगों को, कृपण लोगों को छोड़कर मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं इनका उद्धार चाहता हूं। सबसे पहले सारे जो प्राणी हैं जो कृष्ण को भूल चुके हैं, मैं उनका उद्धार चाहता हूं, और जब तक इनका उद्धार नहीं होगा मैं खुद के लिए मुक्ति नहीं चाहता हूं। तो ये प्रचारक का हृदय होता है, और प्रभुपाद जी का हृदय ऐसे ही था। प्रहलाद महाराज जैसे महाजन के पद चिन्हों में वो चल रहे थे, और उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे कष्ट हो, मेरी मृत्यु भी यहां हो जाए वृंदावन से दूर, लेकिन मैं कृष्ण के शरण में हूं, जो भी होगा कृष्ण के हाथ में है। और इस तरह से प्रभुपाद जी ने वहां प्रचार का कार्य आरंभ किया। धीरे 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 से उनका कार्य बढ़ता गया, 1, 2, 4, 8, 10 ऐसे भक्त आने लगे, कोई आए कोई गए, उनमें से थोड़े रहे स्थिर उनके शरण में, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी संस्था चालू की। कितना कष्ट उन्होंने लिया इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, और किस लिए किया, केवल हमारे लिए किया, हम सब के लिए किया। अगर प्रभुपाद जी अन्य वृद्ध लोगों की तरह है सोचते कि मैं भी रिटायर्ड लाइफ में अपने वानप्रस्थ जीवन में आराम से रहूंगा, अपने घर में, अपने धाम में अपना भजन करूंगा, आजकल वृद्ध लोग वो भी नहीं सोचते हैं, केवल अपने घर में बैठ के टीवी देखकर अपना समय नष्ट करते हैं, इधर उधर गार्डन में जाकर अपना समय प्रजल्प करके नष्ट करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। लेकिन भक्ति के दृष्टि से भी अगर प्रभुपाद जी केवल वृंदावन में रह जाते तो उनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकता, लेकिन प्रभुपाद जी से संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे कि बाहर जाके सब जगह जो पीड़ित लोग हैं उनको शांति देनी चाहिए, सच्चे जो भागवत धर्म है उन तक पहुंचाना चाहिए। तो ये है भागवत धर्म, और हमारा कितना सौभाग्य है कि इस भागवत धर्म को हमें सुनने को और इसकी आज्ञा का पालन करने को हमें मौका मिला है। हमें भी ये भावना को अपने हृदय में स्वीकार कर लेना चाहिए। भारत में हम देखते हैं कि जहां तक धर्म की बात है ये तो एक बहुत बड़ी खिचड़ी है, और हर एक व्यक्ति जो चाहे वो करता है, उसके मन माने ढंग से, जिसको जैसे पूजा करना है नहीं करना है, जैसे भगवान का स्वरूप मानना है वो अपने ढंग से मानता है, और जो धर्म का पालन करते भी हैं साथ साथ पाप भी करते हैं, अपने सारे भौतिक कार्य भी करते हैं, धर्म के प्रति वो आस्था नहीं है, स्वार्थी ढंग से धर्म करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से भागवत धर्म का प्रचार किया उसमें स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये इस्कॉन संस्था का कार्य क्या है? प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि यहाँ जो भक्त आएंगे और जो भक्त बनेंगे वो केवल साधारण बाहर के लोगों की तरह धर्म का पालन नहीं करेंगे, वो अपना जीवन देंगे इस भागवत धर्म के लिए। धर्म प्रचारक बनाने का एक उद्देश्य था श्री प्रभुपाद जी का। वो जानते थे कि भारत में और खास करके हिंदू समाज में लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, केवल अपना और अपने कुटुंब का भला देखते हैं। प्रभुपाद जी 30 साल तक यहाँ कई लोगों के पास गए, कहने लगे आपके पास 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं, एक बेटा हमको दे दीजिए, हम उसको वैष्णव बनाएंगे, उसको धर्म प्रचारक बनाएंगे ताकि समाज में कल्याण होगा। आज समाज में इतना अज्ञान है, घोर अंधकार है, लोग इतना पीड़ित हैं, तो ऐसे नौजवान शिक्षित व्यक्ति हमें चाहिए जिनको प्रशिक्षित करके भक्ति मार्ग में हम उनको समाज में बाहर भेज सकते हैं और जगह जगह जाकर उन लोगों को भागवत हम समझाएंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति ने बात नहीं मानी। हम भी देखते हैं हमारी संस्था में भी अगर एक भी लड़का कहीं ब्रह्मचारी हो जाता है तो कोलाहल मच जाता है, हाहाकार मच जाता है, अरे ब्रह्मचारी बन गया, इस्कॉन वाले केवल नवयुवक लड़कों को ब्रेन वॉश करते हैं और उनको छीन कर ले जाते हैं, घर छुड़वाने के लिए प्रेरित करते हैं, पूरा बदनाम करते हैं इस्कॉन संस्था को। वो जानते नहीं है कि ये संस्था क्या काम कर रही है। सभी लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे केवल अपने कुटुंब की सेवा करें, हमारे साथ में रहें जीवन भर, और खास करके ये हिंदू समाज में ये धारणा है। हम देखते हैं जब लोगों को समझाया जाए कि धर्म प्रचार के लिए, भागवत धर्म के लिए एक अपना बेटा दे दो, कुछ एक उदार हृदय रखो, देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। केवल निंदा, सब स्वार्थ, इतना स्वार्थ भरा पड़ा है हमारे देश में। हर एक व्यक्ति केवल अपने छोटे छोटे स्वार्थ को देखता है, अपने कुटुंब का भलाई कैसे हो, और अपने स्वार्थ में अगर कोई धक्का पहुंच जाए तो धर्म को, मंदिर को, साधुओं को निंदा करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है लोग। छोटी सी बात से, और ये बहुत बड़ी बीमारी हमारे देश में है कि लोग इतने आसानी से निंदा करते हैं धर्म की और साधुओं की, कुछ भी बात मिल जाए निंदा करना चालू हो जाता है, लेकिन धर्म के लिए खुद करेंगे नहीं कुछ, खुद ज्ञान नहीं है, और जिनके पास है या वो ऐसे इस प्रकार से भगवान का प्रचार करना चाहते हैं, समाज का भला करना चाहते हैं निस्वार्थ भावना से, उनको प्रचार करते हैं, नाना प्रकार के सिद्धांत उनको प्रचार करते हैं। इस प्रकार से हमारा समाज बड़े स्वार्थियों का समाज है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत का धर्म ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए नहीं है। निन्मत सराणाम सताम, ऐसे लोगों के लिए है जो दूसरों का कल्याण चाहते हैं, जो परार्थ निष्ठा है कि हमारा जीवन चला जाए लेकिन हम धर्म प्रचारक बनेंगे। धर्म प्रचारक कौन बन सकता है? केवल ब्रह्मचारी नहीं, हर एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा भी धर्म प्रचारक बन सकता है, भागवत धर्म का प्रचारक, शुद्ध कृष्ण भक्ति के पद्धति का प्रचारक। प्रभुपाद जी बताया करते थे, उनकी शिष्या थी और उस शिष्या की छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था सरस्वती, और जब भी प्रभुपाद जी वहां प्रवचन दिया करते थे तो ये सरस्वती जो कि केवल 3-4 साल की बच्ची थी, वो उपस्थित जो श्रोतागण थे उनके बीच बीच में जाकर कंधे पे हरेक को हाथ मारकर बोलती थी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण भगवान है? और सभी लोग बड़े मोहित हो जाते थे इतने छोटी बच्ची को आकर देखकर जो ऐसे बोल रही है। और प्रभुपाद जी कहने लगे, देखो ये प्रचारक है, प्रचार कर रही है। तो प्रचार करने के लिए हमें क्या चाहिए? केवल प्रभुपाद जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमें उनके जीवन के बारे में सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि आदर्श मनुष्य जीवन कैसे होना चाहिए, आदर्श वैष्णव क्या है, आदर्श धर्म क्या है। प्रभुपाद जी ने अपना सारा जीवन हमें यह भागवत धर्म सिखाने के लिए दिया है। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम कैसे कार्य कर रहे होते आज? हम में से हर एक अपने अपने टीवी और भोग के दुनिया में हम पड़े रहते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अपने व्यवसाय, अपने कुटुंब, अपने समाज, अपने स्वार्थ में सब पड़े हुए हैं। किसी को ये नहीं चाहिए कि हम अपना जीवन दे दें। जीवन देने का मतलब नहीं कि अपना कुटुंब छोड़ना है या अपना व्यवसाय छोड़ना है, नहीं, लेकिन इस बात का दृढ़ संकल्प होना कि मेरा जीवन केवल इस मिशन के लिए है, इस भागवत धर्म के प्रचार के कार्य के लिए है। जब 70 साल के आयु में एक बूढ़े सन्यासी ऐसा अपना जीवन दे सकते हैं तो हम अगर थोड़ा कष्ट लें तो उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से यहां भागवत धर्म को इस प्रकार से प्रचार करना हमारी संस्कृति है। कई बार जब एक लड़का ब्रह्मचारी बन जाता है तो हर बार 100 लोग आके पुंडरीक के उदाहरण देंगे, देते हैं ना। पुंडरीक आए, उन्होंने कृष्ण को भी कहा बाहर जाओ, एक ईंट फेंक दिया, कृष्ण ईंट पे खड़े रहे, उनका नाम हुआ विट्ठल। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि पुंडरीक के माता पिता भी आदर्श वैष्णव थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, और पुंडरीक भी उस स्तर में थे कि वो कृष्ण भक्त इतने शुद्ध स्तर में थे कि वो कृष्ण से ऐसे बात कर पाए। क्या कृष्ण हमारे सामने आते हैं और बोलते हैं? तो ये नहीं देखते कि हमारे संस्कृति में इतना सारा उदाहरण है लोगों का जिन्होंने वैराग्य का जीवन अपनाया है, जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए अपना जीवन दिया है। वो नहीं देखते, केवल अपने स्वार्थ के लिए जो अपने इतिहास में संस्कृति में लाभदायक है केवल उसको चुनकर लेते हैं। अपने शास्त्र में, इतिहास में हर व्यक्ति के तर्क को साथ देने के लिए और भी उदाहरण लेंगे। जिसको सिद्ध करना है कि भगवान नहीं है, अपने शास्त्र से कोई बात बता सकता है। तो इस प्रकार से लोगों की ये सब गलत धारणा रहती है। और लोग बोलते हैं मंदिर में क्यों जाना है, ध्रुव महाराज अकेले जंगल में जाके कर पाए। तो क्या आप आपके बच्चे को जंगल में भेजने के लिए तैयार हैं? नहीं, जंगल में नहीं भेजेंगे, लेकिन मंदिर में नहीं जाना चाहिए। भले अपना बच्चा सिगरेट पीना शुरू करे, शराबियों के बीच में घूमे फिरे, उठे बैठे, सिनेमा जाए, टीवी देखे, लेकिन मंदिर नहीं जाए। ये है भारतवर्ष की आधुनिक परिस्थिति। और प्रभुपाद जी इससे 30 वर्ष एक भी लड़का उनको नहीं मिला प्रचार के लिए। और उसके बाद में जब बाहर जाकर विदेशी लोगों को धर्म प्रचार करके वैष्णव बनाया, और जब ये वैष्णव यहां आए तो हमारे लोग क्या बोलते हैं? हम सब जानते हैं गीता भागवत क्या है, कृष्ण कौन है, विदेशियों के मुख से हमें क्यों सुनना चाहिए? अरे विदेशियों को आपसे ज्यादा मालूम है, कम से कम विदेशी ने सारे पाप को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया है, 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, अपना सब कुछ कृष्ण के लिए दिया है। और आप लोग केवल बोलते हो कि हम कृष्ण को जानते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं? केवल कर्मण्येवाधिकारः इति, उसके आगे नहीं जानते, और वो भी आप करते नहीं है। मां फलेषु कदाचन, नहीं करते, केवल कर्म करते रहो, कर्म ही पूजा है। तो इस प्रकार से ये सारे भ्रांतियों को मिटाने के लिए श्री प्रभुपाद ने भागवत धर्म का प्रचार किया। तो जिस भी स्थिति में हम हैं उस स्थिति में हमें ये भागवत धर्म के प्रचार के आंदोलन की सहायता करनी चाहिए। हमारी जो भी उम्र हो, हमारी जो भी आर्थिक परिस्थिति हो, हमें बाहर के लोगों की तरह नहीं बनना है। बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट ने बताया है, तुम या तो ठंडा बनो या तो गर्म बनो, बीट के मत बनो। मतलब या तो बोलो मैं नास्तिक हूं, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, या तो फिर दृढ़ता से भगवान की भक्ति करो, प्रचार करो, बीच में लटक के मत रहो कि हम भी मानते हैं भगवान को लेकिन मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, 16 माला क्या करते हैं, हम सुबह को नमस्कार करते हैं भगवान को 5 बार जाते हैं, इतना काफी है, और फिर मंदिर में जब जाते हैं तो थोड़ा भौतिक स्वार्थ के लिए जाकर मांगते हैं। तो भारतवर्ष में यह दुर्दशा है कि सब लोग ऐसे बीच में लटके हुए हैं। दूसरे जब जाएंगे उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनके टांग खींच के नीचे उनको लाने के लिए लोग बड़े आतुर हैं, निंदा करने के लिए बहुत आतुर हैं। तो इस प्रकार से ये स्वार्थ से दूर होना बहुत कठिन है, लेकिन ये धर्म निस्वार्थीपन का धर्म है, प्रेम का धर्म है। और इस भागवत धर्म को जब हम समझेंगे तो वास्तव में सारे संसार की भलाई हो सकती है। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वहां के राजा श्री प्रताप रुद्र उनका दर्शन करना चाहते थे, तो महाप्रभु ने कहा मैं तो सन्यासी हूं, राजा महाराजाओं का की मुलाकात में नहीं करता, और न ही ऐसे धनी लोगों के साथ में मैं आता हूं, रुपए पैसे वालों के साथ मैं नहीं मिल सकता, मैं सन्यासी हूं। तो राजा प्रताप रुद्र की परीक्षा ले रहे थे। राजा प्रताप रुद्र ने सुना बहुत निराश हुए, और इनके निराश होकर देखकर एक दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से कहा अगर महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं योगी बनूंगा, वैराग्य बनूंगा, मेरे राज्य को त्यागूंगा, सोना चांदी सब कुछ है उसको त्याग कर मैं जंगल में चले जाऊंगा। और उसमें दृढ़ थे वो, तो सब भक्तों ने देखा सोचा कि अरे ऐसा धर्मपरायण राजा अगर राज छोड़ के चला जाएगा तो कैसा चलेगा राज्य। तो फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली, कहा कि रथयात्रा के बीच में जब चैतन्य महाप्रभु यहां बीच में बगीचे में उद्यान में जाके विश्राम करते हैं उस समय तुम अपना वेश बदलो, एक साधारण वैष्णव का पोशाक पहनो और जाके वहां चैतन्य महाप्रभु के चरणों को दबाओ, मालिश करना, उनकी सेवा करना, चरण सेवा करना, और फिर तुम गीत सुनाना, कृष्ण कथा उनको बोलना जब वो विश्राम कर रहे होंगे। तो ऐसे ही अन्य भक्तों ने योजना बनाई चुपके से, महाप्रभु को भी मालूम नहीं था। तो भक्त भगवान से भी ज्यादा कृपालु रहते हैं, यह है भक्त की विशेषता। और ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं भक्तों के संग में आने की क्या आवश्यकता है, वो नहीं जानते इस सूक्ष्म बात को कि भगवान से भी ज्यादा कृपालु भक्त होते हैं, जिसको भगवान ने भी ठुकराया है उसको भक्त स्वीकार करके भगवान के चरण कमल में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज प्रताप रुद्र वहां शांति से आए चुपचाप। वहां महाराज प्रताप रुद्र सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तो उन्होंने चरण सेवा शुरू कर ली। और साथ साथ श्रीमद् भागवत के 31वें अध्याय के श्लोक बोलने शुरू करिए, बड़े मधुर ढंग से, संगीतमय ढंग से। इस अध्याय का नाम है गोपी गीत, बड़ा प्रसिद्ध अध्याय है, और सुंदर सुंदर श्लोक बोलने लगे। और जब वो एक श्लोक पर आए तो महाप्रभु सुनने लगे बड़े ध्यान से, बिल्कुल मग्न हो गए। वो श्लोक जानते हैं कौन सा है? तव कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जनाः। तब ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो एकदम छलांग मारकर उड़े और भूरिदा कहकर आलिंगन कर लिए महाराज प्रताप रुद्र को। वो जानते नहीं थे कि ये प्रताप रुद्र है, आलिंगन किया और कहा कि सबसे उदार हृदय वाले व्यक्ति तुम हो, क्योंकि मेरे हृदय में जलने वाले भौतिक तापों को तुमने शमन कर दिया है। क्यों महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए इस श्लोक से? क्योंकि ये कृष्ण कथा की प्रशंसा करता है। तव कथामृतम, गोपियां कृष्ण से बोल रही हैं, तव कथा, आपके बारे में जो कथा है वो अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त मतलब जो लोग बड़े भौतिक क्लेशों से पीड़ित हो गए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो भौतिक क्लेशों से पीड़ित नहीं है? हम में से यहां मंदिर में ऐसे कोई है जिनकी कोई भौतिक क्लेश नहीं है? हर एक के हैं। जो भी प्राणी ने, जिस भी प्राणी यहां जन्म लिया है, भौतिक क्लेश है। तो ऐसे लोगों का जीवन है, क्योंकि ऐसे कथामृत से हृदय के अंदर जो भौतिक क्लेशों की अग्नि जलती है उसको बुझा देता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिर ईडितम। जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, भक्त हुए हैं, इन्होंने कृष्ण कथा का वर्णन किया है सुंदर सुंदर ढंग से। कल्मश आपहम, कल्मश जो भी हृदय में है, आपहम हृदय को कल्मशों से मुक्त कर देते हैं। श्रवण मंगलम, केवल इसका श्रवण करने से सारा मंगल का उदय हो जाता है, कल्याण हो जाता है सारे जगत का। जहां कृष्ण कथा गूंजती है वहां पर श्रीमद आततम, आततम मतलब सब जगह इसका प्रचार होता है कृष्ण कथा का। और ये कृष्ण कथा श्रीमद दिव्य शक्ति से युक्त है। भुवि गृणन्ति ये, और इस प्रकार से जो व्यक्ति इस कृष्ण कथा को ग्रहण करता है और सारे विश्व भर में फैलाता है, भूरिदा, भूरिदा मतलब बड़े उदार हृदय वाला है, बड़े कृपालु व्यक्ति है वो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रताप रुद्र, प्रताप रुद्र नहीं कहा, वो नहीं मालूम कि वो प्रताप रुद्र थे, कि तुम तो भूरिदा हो, सबसे कल्याण प्रदान करने वाले व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने कृष्ण कथा मुझे बताया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी इस आधुनिक काल के भूरिदा हैं, चैतन्य महाप्रभु के विशेष सेनापति। ये इस कौन संस्था क्या है? ये एक सेना है, लेकिन यहां के यंत्र कौन से हैं? बंदूक गोली नहीं है, यहां का यंत्र है कृष्ण कथा और हरिनाम। इन यंत्रों को, इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर हम शत्रु को, शत्रु के साथ युद्ध करने जाते हैं बाहर। शत्रु कौन है? माया देवी है, जो सबके हृदय में बैठे हुए अनर्थ रूपी राक्षस यहां पर बैठे सबके हृदय में, उनका नाश करना है। तो इसलिए जो प्रभुपाद के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं उनको सैनिक बनना चाहिए। सेनापति जी बैठे हैं, विराजे हैं हमें प्रेरणा देने के लिए। केवल साधारण जो बाहर के लोग धर्म का पालन कैसे करते हैं, 5 मिनट किया नहीं किया, जब गणेश चतुर्थी आया कुछ किया, ऐसे नहीं। सैनिक बनना मतलब अपने प्राण से स्वीकार करना उसे, और ये समझना कि केवल मुझे स्वार्थी बनकर भक्ति अकेले नहीं करना है, मुझे दूसरों को भक्ति देना है, भूरिदा हमें भी बनना है। तो ये है प्रभुपाद जी का आंदोलन, जिसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन दिया। और आज ही के दिन 36 साल पहले वो भारतवर्ष से निकले, अपने जेब में केवल 40 रुपए लेकर, केवल भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहकर। हम जब यहां से बोगारवेश भी जाते हैं तो कम से कम 100-200 रुपए लेकर जाते हैं, कहीं अटक न जाए। लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका गए केवल 40 रुपए। ये पता नहीं कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कौन मेरा देखभाल करेगा, हम बूढ़ा हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, क्या होगा मेरा, कुछ नहीं सोचा। केवल ये सोचा मुझे कृष्ण कथा को फैलाना है। तो इस प्रकार से ये मंदिर तो मंदिर नहीं, लेकिन एक सैनिकों के तैयार करने के लिए एक स्थान है, कृष्ण के सैनिक। क्योंकि लोग सारे संसार में अज्ञान से पीड़ित हैं, दुखी हैं, बहुत ही अति क्लेश में हैं, और अगर उन तक हम ये पहुंचाने में मदद करेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य होगा और उनका भी जीवन धन्य होगा। और इस प्रकार के निस्वार्थ भावना से अगर हमने इस आंदोलन में भाग लिया, निंदा करने की प्रवृत्ति को बिल्कुल त्याग दिया, तब भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी की कृपा हमारे ऊपर होगी और हम सारे समाज में कल्याण का कार्य कर पाएंगे, और श्री प्रभुपाद जी ने जिस कार्य के लिए अपना जीवन दिया वो सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। धन्यवाद। आपको कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी इत्यादि?
कभी हम भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास कैसे ला सकते हैं? हम हर रोज माला जप करते हैं, भजन गाते हैं, पर इतना विश्वास नहीं रहता इतने सालों से, तो फिर कैसे विश्वास लाए, इतना विश्वास लाए कि हम सचमुच अपना जीवन अर्पण करें?
विश्वास कब आएगा? विश्वास से विश्वास आता है, अविश्वास से अविश्वास आता है। अगर हम ऐसे लोगों का संग ज्यादा से ज्यादा करें जिनके हृदय में वो विश्वास है, तो हमारे मन में भी वो विश्वास आएगा। अगर हमने असत्संग ज्यादा किया, उन लोगों का संग किया जिनके हृदय में विश्वास नहीं है कृष्ण नाम के प्रति, तो हमारे विश्वास भी कम हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, नाम अपराध से हमें बचना चाहिए। 10 नाम अपराध हैं। हर रोज सुबह हम 10 नाम अपराधों को बोलते हैं। अगर हम नाम अपराध से बचे तो बहुत ही जल्द शुद्ध कृष्ण नाम का उदय हमारे हृदय में हो सकता है। लेकिन हम नाम अपराध करते रहते हैं, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम अपराध कौन सा है?
वैष्णवों की निंदा।
वैष्णवों की निंदा। इसलिए हमें इससे घबराकर रहना चाहिए। कभी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए बाहर के लोग जब मंदिर की या कृष्ण की निंदा करते हैं या वैष्णवों की निंदा करते हैं, उनको नहीं मालूम कि अपने आप के ऊपर कितना वो मुसीबत ला रहे हैं। इसलिए उनको इस अपराध से बचाने के लिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि वो हमारी निंदा करें। हमारे लिए भी अच्छा नहीं और उनके लिए भी अच्छा नहीं। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। केवल भक्तों के अच्छे गुण देखने चाहिए, दुर्गुण दिखने नहीं चाहिए। और दिखाई भी पड़े तो सोचना चाहिए कि इससे लाखों गुण दुर्गुण हमारे अंदर हैं, उनके अंदर हम क्या देखें। तो सदैव नम्र रहकर, दूसरों को सम्मान देकर, देने के लिए तैयार होकर, अपने आप के लिए सम्मान की प्रतीक्षा न करके सहनशील होकर हम सदा हरि नाम में विश्वास पैदा कर सकते हैं। इसके लिए भक्ति मार्ग में हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। ये भागवत धर्म का मार्ग जो इस्कॉन संस्था से प्रचार किया जा रहा है, ये उन भक्तों के लिए है जो बहुत गंभीरता से भक्ति करना चाहते हैं। बाकी लोग टिकेंगे नहीं, उनके भक्ति के जीवन में सूखे पड़ जाएंगे, तो ये भक्तों की निंदा करना शुरू करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस भक्ति मार्ग को कृष्ण की कृपा समझकर बहुत गंभीरता से स्वीकार करें, बहुत ही हृदय से अपने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप रोज करें, ध्यान पूर्वक ज्यादा से ज्यादा मंदिर में आकर सत्संग करें, कृष्ण कथा करें, बाहर की बातें बिल्कुल नहीं, प्रजल संसारी बातें नहीं करें। इस प्रकार से हम ये आंदोलन में खुद भी प्रगति कर सकते हैं और आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम सहयोग दे सकते हैं।
लोगों के मन में है एक अलग ही विचार है कि ये बाहर वालों का ही है, इस्कॉन हमारा नहीं है, हमारा इंडिया का नहीं है, हमारे भारतवर्ष का नहीं है धर्म। तो इस्कॉन के लिए ये इनको कैसे समझाया जाए, जबकि उनको मालूम है, कितनी बार बोलते भी है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना का संघ है, इसलिए हमारे कृष्ण का ही बाहर वाले प्रचार करते हैं।
हाँ, लोगों को बताना चाहिए कि ये शर्म की बात है हम सब के ऊपर कि हम लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते, और आज ये समय आया है कि बाहर के लोगों को आकर हमें सिखाना पड़ रहा है कि हमारा धर्म क्या है। और जब आते हैं फिर भी हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो ये अपना ही धर्म है, प्राचीन काल का धर्म, अनादिकाल से चलता आया धर्म, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, भगवान श्री कृष्ण का आंदोलन, इस भूमि का ये धर्म है। लेकिन हम इसको भूल चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा भूलते जा रहे हैं। बाकी सब चीजों में हम पश्चिम देशों की नकल करना चाहते हैं, लेकिन जब वो हमारा धर्म लेकर आते हैं तो वो पॉइंट निकालते हैं कि हम इसका पीछा नहीं करेंगे। उनके जैसे हमें टीवी चाहिए, उनके जैसे कपड़े चाहिए, उनके जैसे गाड़ी चाहिए, उनके जैसे सब और कुछ चाहिए, लेकिन वो लोग जब हमारे धर्म का पालन करेंगे तो उसमें हम दोष ढूंढते हैं। ठीक है, ये हमारे भारतवर्ष के लोगों की दशा है, इतनी दुर्दशा। इसलिए अगर केवल हम भक्ति करेंगे, प्रचार करेंगे, यही एकमात्र मार्ग है ये समाज को बचाने के लिए। नहीं तो ये देश की हालत इतनी बुरी हो रही है, इतनी बुरी हो रही है, और हो गया यही इसको बचा के रख सकता है, और कोई मार्ग नहीं। मुझे नहीं मालूम, केवल उनको मालूम, राधा गोकुलानंद को ही मालूम। इतने सारे लोगों को हर रविवार को प्रसाद, और इतने सारे कार्यक्रम करना ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं तो किसी न किसी तरह से चल रहा है।